ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज लगभग 117 करोड़ रुपए के वित्तीय साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और आसपास के 10 स्थानों पर तलाशी ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित कई स्मारकों को पुनर्स्थापित किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने फेज 4 की गोल्डन लाइन पर सबसे लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा बनाए गए 25 नए ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में सरस फूड महोत्सव का आज केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज लगभग 117 करोड़ रुपए के वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामले में दिल्ली और आसपास के 10 स्थानों पर तलाशी ली है। एक रिपोर्ट।
सीबीआई की अब तक की जांच के अनुसार पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सीबीआई ने बताया कि वे अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य आधारित धोखाधड़ी और शुरुआती निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के जरिए व्यक्तियों को लुभाते हैं। सीबीआई के अनुसार तलाशी के दौरान एजेंसी ने धोखाधड़ी में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित जनक सबूत जब्त किए। जांच एजेंसी ने कहा कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अवैध धन के पूरे प्रवाह का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित चौमुखा दरवाजा, बलबन का मकबरा, जमाली कमाली मस्जिद और मेटकाफ स्टेट स्मारकों को सावधानी पूर्वक पुनर्स्थापित किया गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली वासियों से डीडीए द्वारा विकसित मेहरौली पुरातत्व पार्क, बलबन का मकबरा और यमुना किनारे स्थित टूरिस्ट स्पॉट बांसेड़ा जाने का आग्रह किया।
दिल्ली का इतिहास बड़ा सुंदर है, तो यहाँ पर भी आप जो बहुत सारी चीजें हैं उन्हें देखें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें एक या दो साल के अंदर डेवलप किया गया है, उनको भी आप जानें और समझने की कोशिश करें। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, बर्मन स्टोन, संजय वन सहित हमारे द्वारा यमुना के किनारे विकसित टूरिस्ट स्पॉट्स मांसेरा भी जरूर जाए।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी से रेल पटरियों को लगातार उन्नयन किया जा रहा है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच का विकास पूरा हो गया है।
माननीय अध्यक्ष जी, आज विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। 1300 स्टेशन का एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और उसका काम बहुत विस्तृत तरीके से चल रहा है। कई स्टेशन तो इतने बड़े स्टेशन हैं कि उस पे 700-800 करोड़ रुपए का भी खर्चा हो रहा है। बहुत सारे स्टेशन हैं जिन पे 100 से 200 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों पर जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि वो जनता के सवालों का जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि भाजपा सरकार से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर जवाब चाहती है, लेकिन सरकार इन सवालों से भाग रही है।
जो लोकहित के मुद्दे हैं और जनता जो जानना चाहती है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम ये जो दोहरा चरित्र है इस पर हम जवाब चाहते हैं सरकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन सरकार जवाब से बच रही है।
दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजधानी में सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने शहर में आगामी चुनाव को लेकर अपनी अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं।
भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर से दिल्ली में अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी शहर भर में पदयात्राओं के माध्यम से लोगों के बीच संवाद कर रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, वहीं भाजपा और कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। इस बीच विधानसभा चुनावों के टिकटों के लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों से दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पार्टी कार्यालयों पर पहुंच रहे हैं। पार्टी कार्यालयों पर आगामी चुनाव की रणनीति और अभियान को लेकर पदाधिकारियों के बीच भी लगातार बैठकें जारी हैं। अक्षित के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
दिल्ली विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं, प्रदूषण और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया।
तीन दिन के सत्र के दूसरे दिन आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि राष्ट्र राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। इसके जवाब में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार प्रदूषण, शिक्षा और वित्त जैसे मुद्दों से बच रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने कामकाज में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में अब तक पारदर्शी नहीं रही है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज फेज 4 के गोल्डन लाइन पर तुगलकाबाद एयरफोर्स लॉन्चिंग शाफ्ट और मां आनंदमयी मार्ग के बीच की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया। DMRC ने बताया कि इस सुरंग तुगलकाबाद एयरपोर्ट कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। DMRC ने कहा कि यह सुरंग 105 मीटर लंबी है और बोरिंग मशीन से बनाई गई है। निगम ने बताया कि सुरंग औसतन 16 मीटर गहरी बनाई गई है और इसमें 1894 रिंग्स लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा बनाए गए 25 नए ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में अब कुल 2500 ई वाहन चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बन गई है। आतिशी ने कहा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ई वाहन पॉलिसी का नवीनीकरण किया है। उन्होंने कहा कि अब दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के अलावा रोड टैक्स पर भी छूट दी जा रही है।
पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जितनी गाड़ियां रजिस्टर होती हैं उसमें से 12% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अभी रिसेंटली हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से रिन्यू किया है जिसमें 2-wheelers, 3-wheelers को जो सब्सिडी मिलती है उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाती हैं उन्हें रोड टैक्स में भी छूट मिलती है।
दिल्ली के कैनॉट प्लेस में सरस फूड महोत्सव का आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया। श्री चौहान ने शहरवासियों से फूड महोत्सव में आने और विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लेने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे के दौरान विभिन्न राज्यों से आए फूड स्टॉल की लखपति दीदियों से बातचीत की और स्टॉल में बने व्यंजनों का स्वाद चखा। इस महोत्सव में देश के 25 राज्यों के 30 स्टॉल पर 300 से अधिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। महोत्सव में राज्यों के मशहूर व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा रहा है जिनमें राजस्थान का दाल भाटी चूरमा, तेलंगाना हैदराबाद की दम बिरयानी, ओडिशा का मुगलई चिकन जैसे कई अन्य लजीज व्यंजन शामिल हैं। इस महोत्सव में देश भर से करीब 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। ये महिलाएं पारंपरिक व्यंजन बनाने में माहिर हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में गुजरात से आई बनकर भावना ने इस तरह के मंच प्रदान करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।
लखपति दीदी से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला उसकी वजह से हमको बहुत लाभ हो रहा है क्योंकि घर पे बैठ के हम नहीं कर सकते, हमको ये प्लेटफॉर्म चाहिए तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिला है तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का।
सरस फूड महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क है और यह महोत्सव 17 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2,95,00,000 मकान बनाने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 38,00,000 घर आवंटित किए गए हैं। इसके लिए 10,600 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की गई थी।
योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2,95,00,000 आवास स्वीकृत कर चुका है जो हमारा टारगेट था और उसमें से 2,68,00,000 घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज समाप्त हो गया। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। विधानसभा सत्र की शुरुआत में आज विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए तो वहीं राजधानी की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आतिशी ने सदन की अनुपूरक मांगों पर मंजूरी प्राप्त की तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए 7200 करोड़ रुपए जारी करने की मांग उठाई। भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर जब बात करने की कोशिश की तो स्पीकर ने उन्हें सख्ती दिखाई। विशेष उल्लेख के दौरान लक्ष्मीनगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली में पानी की किल्लत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार मॉनसून में जलभराव हुआ और सीवर लाइन को लेकर समस्या बनी हुई है। मंडावली, सुंदर पार्क, स्कूल ब्लॉक सहित कई इलाकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की। घोंडा से भाजपा विधायक अजय महावर ने गामड़ी रोड के चौड़ीकरण का मामला उठाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये सड़क आती है और दूसरे विभागों का कहना है कि जब तक सभी की सहमति न बन जाए तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। श्री महावर ने बताया कि यहां सड़क की पैमाइश का काम पूरा हो चुका है लेकिन आगे का काम नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर मॉडल टाउन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने उन डीटीसी कर्मियों को पेंशन देने की मांग रखी जो पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने अशोकनगर क्षेत्र में एक रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाने की मांग रखी और कहा कि अंडरपास को अविलंब बनवाया जाए क्योंकि यहां पर कई हादसे हो चुके हैं। कोंडली से आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने डीडी के खाली प्लॉटों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के मामले को उठाया। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने इलाके में कन्वेंशन हॉल बनाने के लिए स्थान मुहैया करवाने की मांग रखी। आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल ने रिठाला गांव में परशुराम चौपाल बनवाने का मुद्दा उठाया। वजीरनगर से आम आदमी पार्टी विधायक राजेश गुप्ता ने झुग्गियों के बदले फ्लैट्स योजना का जिक्र करते हुए कहा कि झुग्गी के बदले योजना के फ्लैट को लाभार्थियों को आवंटित किया जाए। वहीं सदन के पहले दिन शुक्रवार को शुरू हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा को दुर्गेश पाठक ने आगे बढ़ाते हुए नारायण में हुई हत्या का जिक्र किया। हालांकि रोहिणी से भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में मिले उनकी पूर्ण आवास का मुद्दा उठाते हुए एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस पर चर्चा की मांग रखी जिसे विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में भाजपा के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिल्डान ने कानून व्यवस्था पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश की राजधानी में अपराध का स्तर काफी बढ़ गया है। केराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था थाना लेवल कमेटी के खत्म होने के बाद और ज्यादा खराब हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि राज मनचंदा भारतीय स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी थे और अपने समर्पण तथा उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री ने सेमनान में रहकर की गई राष्ट्र की सेवा के लिए भी उनकी सराहना की। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 172 के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 200 के पार चला गया। दिल्ली के नेहरू नगर स्टेशन पर 248, द्वारका में 220, मुंडका में 214, आनंद विहार में 213, आरकेपुरम में 204 और जहांगीरपुरी में 201 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात और सवेरे के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि धुंध छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज लगभग 117 करोड़ रुपए के वित्तीय साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और आसपास के 10 इलाकों में तलाशी ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित कई स्मारकों को पुनर्स्थापित किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने फेज 4 की गोल्डन लाइन पर सबसे लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा बनाए गए 25 नए ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया और दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे सरस फूड महोत्सव का आज ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।